डॉक्टर रजत मित्रा, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम. आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो करिश्मा डॉट कॉम पर.
आपका धन्यवाद.
रजत जी, जैसे मैंने आपके इंट्रोडक्शन में कहा कि आप एक लेखक हैं, एक मनोवैज्ञानिक हैं, और आप यहाँ हिंदू मेमोरियल डे पे बोलने के लिए आए हैं. थोड़ा सा हमें हिंदू मेमोरियल डे के बारे में बताइए हमारे सुनने वालों को.
मैं दिल्ली से आया हूँ हिंदू मेमोरियल डे में ज्वाइन करने के लिए और अपने एक्सपीरियंसेस अनुभव शेयर करने के लिए. और मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ और मेरा फील्ड ऑफ स्टडी जो है वो सदमा है, और जिसको हम कहते हैं मेमोरी स्टडीज है. मेमोरी स्टडीज का ये मतलब होता है कि जब एक सोसाइटी, एक जो है एक समाज अपने मेमोरी को अपने पास्ट की मेमोरीज की तरफ ढूंढने जाता है, तो अपने आइडेंटिटी के लिए, अपने रूट्स के लिए. और ये जब भी समाज में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होता है तो मेमोरी स्टडीज जो है उस समाज के लिए एक बहुत बड़ा मायने रखती हैं. जैसे अमेरिका में जब 9/11 हुआ था तो सडनली जो है मेमोरी स्टडीज को एक बहुत इंपॉर्टेंस आने लगी. लोग दे वॉन्टेड टू नो वेयर दे कम फ्रॉम, उनके पास्ट के बारे में कि क्यों उनके साथ ऐसा हुआ. तो ये जिस भी पूरे विश्व में ही जिस समाज में एक उथल पुथल होती है, एक बहुत बड़ा चेंज होता है, मेमोरी स्टडीज कम इनटू फोकस. और हम मनोवैज्ञानिक जो है उसको समझने की, उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं. तो जो हिंदू मेमोरियल डे है उसमें मेरा यही प्रयत्न रहेगा, दिस विल बी माय अटेम्प्ट टू टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मेमोरी स्टडीज फॉर हिंदू नाउ दैट देयर इज अ मेजर चेंज, एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो हमारे भारत में आ रहा है. तो इसमें मेमोरी को एक बहुत बड़ी प्राथमिकता आ रही है. मेमोरी, मेमोरियल्स, मेमोरियलाइजेशन जिसको हम कहते हैं, तो इसके बारे में जो है विस्तार से बताने के लिए ये क्यों हो रहा है और इसमें हमारा क्या रोल है, किसमें हम कैसे हम देश के बाहर रह के भी जो है देश को मदद कर सकते हैं, ये मेरा प्रयत्न होगा. दिस विल बी माय अटेम्प्ट.
Awesome. So, आपने आप एक मनोवैज्ञानिक हैं और राइटर भी हैं, और अभी आपने एक किताब लिखी है जो कि इज अगेन वेरी इम्पोर्टेंट ऑन वेरी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कश्मीर के ऊपर. आपकी जो किताब है वो है द इनफिडल नेक्स्ट डोर. थोड़ा सा उसके बारे में हमारे सुनने वालों को बताइए.
जरूर. मैं और मेरी वाइफ जो है वो हम कश्मीरी पंडित कैंप्स जो है वहाँ पे हमने 10 साल तक काम किया है मनोवैज्ञानिक के रूप में, और जो लोग वहाँ पे, जो हिंदूज वहाँ पे थे उनके साथ. तो उनके साथ काम करते करते उन्होंने हमें इतने नैरेटिव्स बताए अपने बारे में, एंड मेनी ऑफ देम वेर अबाउट हिस्टोरिकल फोर्सेस. तो एक दिन मैं आपको एक कहानी बता सकता हूँ कि जब हम कैंप से बाहर आ रहे थे तो किसी ने मेरे से जो है, एक कैंप के रहने वाले ने मेरे से पूछा, मुझे और मेरी वाइफ से, कि आप इस कैंप का नाम जानते हैं? तो हमने कहा हाँ, मुट्ठी कैंप. तो उन्होंने कहा नहीं, ये जो कैंप है इसका नाम हमने दिया है औरंगजेब का सपना, औरंगजेब ड्रीम कैंप. तो मुझे बड़ा अचंभा लगा कि ये 300 साल पहले का ये किस्सा ऐसे क्यों बता रहे हैं. और मुझे कुछ मालूम भी नहीं था. मैंने अपनी वाइफ की तरफ देखा, उनको भी कुछ मालूम नहीं था. पर जब हमने आके रिसर्च किया उसके बारे में तो हमको पता चला कि औरंगजेब का जो है सपना था कि वो भारत को पूरी तरह से मुस्लिम बना दे. और उसको किसी ने बताया था कि अगर आप कश्मीर को कन्वर्ट कर सकते हैं तो जो पूरा भारत कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये जो आदमी था जो हमको आया था बताने के लिए, उसने ये बताने की कोशिश की कि ये जो कैंप है इसमें लास्ट जो रिफ्यूजीज थे कश्मीर के वो आके यहाँ रह रहे हैं, तो औरंगजेब का सपना पूरा हो गया है क्योंकि कश्मीर वैली में अब हिंदूज नहीं रहे. तो उस ये जो है एक, इसको हम कहते हैं ट्रांसजेनरेशनल ट्रॉमा, कि बहुत पुरानी कोई जो है सदमा या बहुत पुराना कोई जो किसी समाज के साथ हुआ है वो हम जेनरेशन टू जेनरेशन पास ऑन करते हैं, वो खत्म नहीं होता है. तो बहुत से समाज, बहुत से सोसाइटीज के साथ जिनके साथ सदमा लगा हो, वेदर इट इज नेटिव अमेरिकन्स इन USA और वेदर इट इज द ज्यूज, वेदर इट इज आर्मेनियंस, दे हैव गॉन थ्रू ट्रांसजेनरेशनल ट्रॉमा, एंड रिसर्च शोज दैट हिंदूज हैव ऑल्सो गॉन थ्रू दैट. यू नो दैट दे हैव गॉन थ्रू जनरेशंस ऑफ ट्रॉमा. तो इस बात को समझने की जरूरत है अपने समाज के बारे में, अपने सभ्यता के बारे में, और इसमें जो है मनोविज्ञान काफी मदद कर सकता है. तो उसी के बारे में जो है मेरी जो पुस्तक है, मैंने उसी के बारे में एज अ मीडियम ऑफ फिक्शन जो है लिखा है, ताकि मैं जो कैंप्स में जो मैं कश्मीरी पंडित के साथ, हिंदू के साथ जो मैंने सुना है उनको मैं एक्सप्रेस कर सकूं. और ये मैंने फिक्शन का माध्यम इसलिए लिया क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी एक मेजर इशू था, क्योंकि मैं उन लोगों के बारे में डायरेक्ट नहीं लिख सकता हूं. मैं आई वुड हैव किप देम, आई हैड देयर परमिशन टू राइट, बट आई कुड ओनली डू दैट थ्रू द मीडियम ऑफ फिक्शन. सो दैट वाज माय बुक. इट इज बीइंग नाउ रेड बाय पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, आई एम ग्लैड टू से, इंक्लूडिंग पोटेंशियल नोबेल लॉरेट, इंक्लूडिंग नोबेल प्राइज नॉमिनीज एंड अदर पीपल, इंटेलेक्चुअल्स, एंड मेनी ऑफ देम से ही इस बुक से हमको समझने में ये मदद मिलती है कि आर्टिकल 370 को जो है क्यों जाना चाहिए था. तो आज के संदर्भ में मुझे बहुत लोगों ने इस बारे में लिखा है कि जो कश्मीरी पंडित के साथ जो हुआ था, हाउ दे वर लिविंग अ डिस्क्रिमिनेटेड लाइफ एंड हाउ आर्टिकल 370 वॉज अगेंस्ट द हिंदूज. So that is what they understand by reading my book. मेरे book को पढ़ने के बाद वो ये समझ रहे हैं. तो मुझे इस बात की खुशी है और इसी बात का जो है मैं व्याख्या करूंगा कल के टॉक में.
सो रजत जी, इससे पहले कि हम आर्टिकल 370 के बारे में और बात करें, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, आपने जो बताया कि किस तरह से जो ट्रॉमा है, जिनके ऊपर वो ट्रॉमा गुजरा है, उस किस तरह से वो जनरेशन को पास ऑन करते हैं, यू नो, बट एट द सेम टाइम द पीपल हु आर इन्फ्लिक्टिंग ट्रॉमा इन द नेम ऑफ मे बी रिलीजन और फिलोसफी और डॉक्ट्रिन, वॉट एवर वी कैन से, जैसे कि अब आप देखिए कि 300 साल पहले जो औरंगजेब ने कहा, उनका सपना था, उस सपने को पूरा करने के लिए भी पता नहीं कितनी पीढ़ियां लगी हुई हैं उस काम में. सो ये भी एक रिसर्च का हिस्सा हो सकता है, राइट?
हुए हैं और ये आखिरी एक्सोडस था. हेलो,
हाँ जी,
हाँ, नहीं सॉरी, मैंने आपको, मुझे समझ नहीं आया था, मैंने शायद आपको इंटरप्ट किया, मुझे माफी चाहता हूँ.
नहीं, नहीं, नहीं.
तो कश्मीर में 7 एक्सोडस हुए हैं एक के बाद एक, और ये जो 1989-90 का एक्सोडस था वो आखिरी एक्सोडस था. तो इस 7 एक्सोडस के बारे में जो है बहुत कम जानकारी है, और कश्मीरी पंडित जो है हिंदू थे, इतने डरे हुए थे कि ना तो उन्होंने इसके बारे में कहीं ज्यादा कुछ लिखा है या व्याख्या किया है. ये सिर्फ जो है ओरल हिस्ट्री जो है ये पास ऑन होती रही है, और उसी तरह से उन्होंने अपने कल्चर को, अपने सिविलाइजेशन को प्रोटेक्ट किया है.
जी, बट मैं यही बोल रही थी, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट रजत जी, आपने तो जिनके ऊपर ये गुजरी ट्रॉमा, जिनके ऊपर गुजरा उनके ऊपर लिखा, लेकिन ये जो ट्रॉमा जो इन्फ्लिक्ट करते हैं, यू नो, जैसे आपने कहा कि 7 एक्सोडस हुए हैं, जो लोग उसके पीछे किसी मनोवैज्ञानिक ने कभी रिसर्च नहीं किया कि क्या कारण हो सकता है कि यू नो जो सपना औरंगजेब ने 300 साल पहले देखा हो, उसको उनके बाद इतनी जनरेशन वो काम करती आ रही है. यू नो, आज हम उनको टेररिस्ट कह लें, या इससे पहले यू नो राजा कह लें, या कुछ भी कह लें. सो उसके ऊपर कोई उस एंगल पे किसी ने रिसर्च किया कि नहीं किया? यू नो, वी वांट टू नो दैट.
नहीं, उस एंगल से एक्चुअली रिसर्च नहीं हुआ है. और जो है ये जिन लोगों ने परसिक्यूशन किया कश्मीरी पंडित के ऊपर, अनफॉर्चुनेटली दे प्ले विक्टिम, वो अपने को जो है विक्टिम बताते हैं, और बाय एंड लार्ज उनका जो नैरेटिव है वो काफी हद तक कामयाब भी रहा है. क्योंकि अगर आप कश्मीर के बारे में पढ़ें तो यू विल रीड मोर बुक्स अबाउट व्हाट कश्मीरी मुस्लिम्स हैव डन, यू नो, हाउ दे हैव सफर्ड, बट देर आर ऑलमोस्ट वेरी लिटिल, यू नो, books and analysis and fiction works on what Kashmiri Pandits have gone through. So because Kashmiri Muslims have portrayed themselves as a victim, they have escaped, you know, being seen as persecutors by the rest of the world. So ye ek historical injustice hai, untruth hai, jisko balance karna bahut zaruri hai.
तो उसके लिए तो हम भी रिस्पॉन्सिबल हुए, यानी कि जो हिंदू हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल हुए जिन्होंने नहीं लिखा या नहीं कहा.
Sure. हाँ, और अब जब मैं बुक्स लिखता हूँ, जब मैं अपने अनुभव का जो है पोस्ट डालता हूँ, तो बहुत से लोग जो हैं वो आके कहते हैं, अरे ये तो हमारा अनुभव भी था. जैसे कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट में फेसबुक पे लिखा था कि मेरे जो फादर इन लॉ थे वो He was the son of Jain Tikku, who was called the mathematician of Kashmir.
अच्छा.
तो वो जब एडमिशन के लिए गए तो उन्होंने देखा कि लिस्ट लगी हुई है और लिस्ट पे लिखा हुआ है कि the following candidates have been selected and a separate list for Hindu candidates will be taken out if necessary.
Wow.
तो वो इस बात से उनको इतना जो है वो लगा सदमा. ये ईयर था 1957 और उनको लगा कि क्या एक फ्री इंडिया में ऐसा हो सकता है कि ये आप लिस्ट लगाएं ओपनली. तो वो बताते हैं ये उनकी कहानी थी कि वो क्यों कश्मीर से जो है दिल्ली आए और दिल्ली में बस गए. तो उन्होंने कहा कि हम बख्शी गुलाम मोहम्मद थे जो चीफ मिनिस्टर, उनके पास गए हम सारे स्टूडेंट्स पेरेंट्स. हमने कहा हम कहाँ जाएंगे, हमारे मार्क्स हैं, तो आपने एडमिशन क्यों नहीं दिया इसमें. उन्होंने कहा भाई देखो एडमिशन हमें इसलिए नहीं दिया क्योंकि तुम्हारे मार्क्स कम है, एडमिशन इसलिए नहीं दिया क्योंकि तुम जो है मुस्लिम नहीं हो और तुम्हारे लिए तो पूरी इंडिया पड़ी हुई है, तुम यहाँ पे एडमिशन का क्यों वो कर रहे हो, कश्मीर को जो है हमारे लिए छोड़ दो. तो उससे उनको इतना धक्का लगा. उन्होंने कहा कि मैं अपने फादर से आके पूछा कि जब मेरे मार्क्स वन ऑफ द हाईएस्ट हैं तो मुझे एडमिशन क्यों नहीं मिलेगा. तो उन्होंने कहा कि ये जो है हमारी स्थिति रही है और ये पिछले 500 साल से है, तो आर्टिकल 370 जो है ये हमको इस बात को चैलेंज करने से रोकती है. तो उन्होंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मिस्टीरियसली जो है डेथ हुई थी और उसके बाद कश्मीरी पंडित को सब एक मैसेज गया था कि साइलेंट रहो, चुप रहो, अगर बोलोगे किसी बात को लेकर, किसी इशू को लेकर उछालोगे प्रॉब्लम में पड़ जाओगे. तो फिर उन्होंने और उनके जो बाकी सारे वहां स्टूडेंट्स थे उन्होंने कहा कि हमारे मन में फिर यही बैठ गया कि हमारे लिए कश्मीरी हिंदूज के लिए कश्मीर में कोई जगह नहीं है और आर्टिकल 370 उसका वजह है कि हम उस पर चैलेंज नहीं कर सकते. तो दिस वॉज द रीजन दैट जनरेशन ऑफ कश्मीरी पंडित लेफ्ट कश्मीर आफ्टर 1947 एंड केम टू सेटल डाउन बिकॉज देयर वाज नो जस्टिस फॉर देम एंड आर्टिकल 370 इज अ इशू ऑफ जस्टिस, of equality, of human rights. That is what I go and tell people. And many people are not aware of these aspects of how Kashmiri Pandits were discriminated because of Article 370.
So
इसी चीज के बारे में जो है मैंने अपने पुस्तक में लिखा है through a medium of characters that why Article 370 should have been abrogated. Yeah.
So, Dr. Mitra, I think as we all know that how 370 was discriminating in nature, और अब जो है वो हट गया है. And अब हम लोगों के जैसे कि आमतौर पर जो कि आशावादी हिंदू हैं या जो हमारी सरकार है या जो हमारे देशवासी हैं जो सब तरफ खुशियां मना रहे हैं कि भाई अब सब ठीक हो गया, उसके बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि अभी भी यू नो तलवार तो लटक रही है, अभी भी इतनी आसानी से तो गिव अप होगा नहीं, तो उसका आप इसका जो नेक्स्ट क्या देखते हैं, व्हाट इज योर यू नो बिकॉज यू आर अ साइकोलॉजिस्ट एज वेल, आप मनोवैज्ञानिक भी हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है नेक्स्ट.
हाँ देखिए, एक खुशी है जो बिल्कुल ठीक है और लोगों को खुशी मनानी चाहिए क्योंकि ये एक बहुत ही साहसी, महत्वपूर्ण और जो है करेजियस कदम जो है गवर्नमेंट ने उठाया है. लेकिन इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा ये कहना गलत है क्योंकि ये एक संघर्ष की शुरुआत है. क्योंकि जिन लोगों ने इसका फायदा उठाया या जिन लोगों के फेवर में ये था वो इसे इतनी आसानी से बदलने नहीं देंगे. वो जो है इसके बारे में अपोज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और वो ऑलरेडी धीरे धीरे शुरू हो रहा है. तो इसके बारे में जो है हमको एक जागरूकता फैलानी है और जो सबसे बड़ी बात है कि वी हैव टू वर्क एज अ कलेक्टिव फोर्स. कश्मीरी पंडित जो है लाइक अ एक्साइल्ड कम्युनिटी, कश्मीरी ऑल्सो इट इज ट्रू ऑफ हिंदूज टू अ ग्रेट एक्सटेंट, हम बहुत फ्रैगमेंट हो चुके हैं. हमारी जो एक कलेक्टिव फोर्स है, जो कलेक्टिव वॉयस है, वो हमको अपने अंदर लानी है और उसके साथ एक संघर्ष करना है. और ये लंबी संघर्ष है जिसके बाद जो है जो हमारा गोल है वो अटेन होगा. तो ये बात जो है कश्मीरी पंडित, इंटेलेक्चुअल्स, हिंदूज, ये हम जानते हैं. तो ये जो खुशी का माहौल है ये अच्छा है, इसको होना चाहिए. मैं कहूंगा कि इसको रोकने की कोई वो नहीं है या इसको प्रीमैच्योर करने की जरूरत नहीं है. लेकिन इसके साथ जो है विजुअल थिंकिंग रखना ये अब सब ठीक हो जाएगा नहीं, वो भी नहीं है. इसके लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, हमें इसके बारे में लिखना पड़ेगा, जागरूकता लाना पड़ेगा. मैंने एक कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट में लिखा था अपने कि जब हम कश्मीरी पंडित कैंप्स में काम करते थे हमने देखा कि वहां पे जो है पेरेंट्स वो कैंप्स में आने से पहले तो बच्चों को बेड टाइम स्टोरीज सुनाते थे, लेकिन कैंप्स में आने के बाद उन्होंने बेड टाइम स्टोरीज सुनाना बंद कर दिया. देयर वर इश्यूज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड ह्यूमिलिएशन दे फेस्ड. दे फेल्ट कि इंडिया डज नॉट केयर फॉर देम. सो इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर वी द रेस्ट ऑफ द कंट्री टू रीच आउट टू देम एंड से कि इंडिया हैज नॉट स्टॉप्ड थिंकिंग अबाउट देम. वी हैव नॉट फॉरगॉटन यू. वी स्टैंड विद यू. वी सपोर्ट यू. क्योंकि जो ये एलियनेशन इन्होंने उस वक्त फेस किया था कि सारा विश्व जो है ऑलमोस्ट लिटरली चुप था, तो वो उनको लगा था कि शायद हमारे साथ कोई अब नहीं है. लेकिन आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद उनको लग रहा है कि हमारे साथ कोई है. द रेस्ट ऑफ इंडिया स्टैंड्स विद अस. देयर आर पीपल हु स्टैंड्स विद अस. तो ये एक बहुत ही पावरफुल फीलिंग है जो हमारे समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है और ला रही है. और इसके लिए हम सबको जो है एक जागरूकता लाना, एक अंडरस्टैंडिंग लाना, एक रिफ्लेक्सिविटी लाना, एक अवेयरनेस लाना जो है बहुत जरूरी है. तो उसके साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं.
एंड आई बिलीव दैट हिंदू मेमोरियल डे वी विल हियर यू नो मोर ऑफ यू नो दिस काइंड ऑफ सपोर्ट एंड सम इंफॉर्मेशन. राइट? एम आई राइट रजत जी? और आप बाकी
Absolutely.
जी. सो बहुत बहुत धन्यवाद आपके. आपने हमें इतना टाइम दिया रजत जी. वी आर रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल. वेरी आई ओपनिंग इन्फॉर्मेशन दैट वी हैव रिसीव्ड. आई वुड लाइक ऑल माई लिसनर्स टू नोट डाउन द नेम ऑफ द बुक द इनफिडल नेक्स्ट डोर रिटन बाय डॉक्टर रजत मित्रा और उसे जरूर पढ़िए.
हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और ये बोलने का जो है मौका दिया. ये मेरा सौभाग्य है और मैं आपको ऐसे चीजों से अवगत करा सकता हूँ, बता सकता हूँ जो आज इंडिया में एक रियलिटी है और हम सबको जो है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए. देन ओनली वी कैन बिकम अ कलेक्टिव फोर्स टू फाइट फॉर आवर राइट्स.
Awesome. Thank you so much, Dr. Rajat Mitra, for speaking to us.